भगवान ने जो वृक्ष का उदाहरण दिया था, एक वृक्ष जो ऊपर की ओर जिसके मूल है और शाखाएं नीचे की ओर है, क्योंकि आपने एक ड्राइंग के माध्यम से चर्चा भी की थी कि संसार के वृक्ष को भगवान ऐसा ऐसा सजेस्ट किए कि इसको वैराग्य की तीक्ष्ण हथियार से इसको काट देना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 3 और 4 की विशेष वर्णन के बाद भगवान फिर बताते हैं कि नवदा भक्ति के माध्यम से, हमें प्रभुपाद तात्पर्य में कहते थे कि नवदा भक्ति के माध्यम से इसको काट दिया जाए। 3 और 4 में कहा है कि डिटैचमेंट के हथियार से इसको काटा जाता है, इसलिए मनुष्य को ऐसे परम गंतव्य स्थान के विषय में खोज करनी चाहिए, जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ के जत गतवा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता। तो भगवान की शरणागति के माध्यम से सब कुछ शुरू होता है। प्रभुपाद फिर तात्पर्य में शरणागति के विषय में भी कहते हैं कि मनुष्य को भगवान की फेवर प्राप्त हो उसके लिए उसको कुछ नहीं करना है, बस एक ही कार्य करना है, शरणागति, बस कुछ नहीं करना है। यही चीज भगवान ने 5वें अध्याय में बताई थी। अभी भी मैं 4 घंटा पूरा 5वां अध्याय पढ़ा रहा था, लाइक आई टुक 25 श्लोकस टुडे इन लास्ट 4 आवर्स। एक वे तो उसमें भगवान अंत में कहते हैं 5वें अध्याय में कि भक्तों को मैं हेल्प करता हूं, ब्रह्मवादियों को कोई हेल्प नहीं मिलती, ज्ञानियों को परमात्मा के पास जाते लेकिन कृपा नहीं मिलती क्योंकि परमात्मा को कृपा करना आता नहीं, क्योंकि वो तो उपदेशता और अनुमंता है, उनको दो ही काम आता है कि परमिशन देते हैं और सुपरवाइज करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो कृष्ण ही एक ऐसे बचे कि जिनके पास कृपा है, तो वो कृपा केवल भक्त को प्राप्त हो सकती है और इसके कारण भक्त किसी भी अवस्था में से मुक्ति को प्राप्त, किसी भी अवस्था से मुक्त हो सकते हैं, भक्त किसी भी समय में सफल हो सकते हैं या फिर भक्त किसी भी समय में सुखी रह सकते हैं। कोई परिस्थिति, कोई काल, कोई समय, कोई भी संसार में ऐसा बाधा हो ही नहीं सकता जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में बीच में आ सके, कोई हो ही नहीं सकता। जब मेरा बड़ा भाई जिसने शरीर छोड़ दिया था 2003 में, तो उनका जो कृष्ण भक्ति बहुत इंस्पायरिंग था और उनका शरीर छोड़ना भी बड़ा इंस्पायरिंग था। तो उनके शरीर छोड़ने के पश्चात मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था 4-5 दिन के बाद। शौक तो था ही होता है, वो हर्ट तो होती है आपका बात, लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, रिक्वेस्ट था आर्टिकल लिखा था बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड। उनके विषय में थोड़ा लिखा था और कृष्ण भक्ति की महिमा उसके अंदर गाई थी लाइक समवट, और वो इट वॉज आस्किंग फॉर द ब्लेसिंग्स, कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो छोटा सा लेटर था, और इस्कॉन के जितने भी गुरुवृंद हैं, जितने भी जीडीसी है, उन सबको पर्सनल ईमेल में भेजा था मैंने। अधिकतर विशेष करके जिनको मैं जानता हूँ, अधिक कोई 20-25 अलग अलग इधर से इधर भेजे गए, सबका रिप्लाई आया था इस तरह से, अलग 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 सब ने रिप्लाई दिया, एवरीवन, ऑल धर्मदा स्वामी, भक्ति चारु स्वामी, लोकनाथ स्वामी, सब सन्यासियों ने लिखा ब्लेसिंग के रूप में अलग अलग अलग। और उसमें शायद श्रीधर महाराज जो अब नहीं है, श्रीधर महाराज थे या फिर और कोई महाराज थे, या आई थिंक गिरिराज स्वामी थे, आई थिंक गिरिराज स्वामी, तो गिरिराज स्वामी ने या फिर कोई सन्यासी थे, उन्होंने ऐसा लिखा था तो उन्होंने लिखा था तो उन्होंने लिखा था कि वी आर सो हैप्पी टू नो दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑब्स्टेकल बाय एनीथिंग, कृष्ण भावनामृत में किसी भी प्रकार का कोई बाधा आ ही नहीं सकता। आपको ये एक्सक्यूज़ गलत है सब प्रकार के एस्पेस, कोई कहता है कि मेरी ये समस्या है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मेरी वो समस्या है इसलिए मैं भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, देर इज नो एक्सक्यूज, ऐसा कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि जो कृष्ण भक्ति के सामने टिक पाए, इट्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहता भी है तो तुरंत हम समझ जाते हैं यूजलेस, पूरा यूजलेस एक्सक्यूज है। कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एकमात्र चीज की आवश्यकता होती है, वह है शरणागति। शरणागति अगर सरेंडर हम होते हैं तो परिणाम यह आता है कि शरणागति के माध्यम है श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, उस माध्यम से शरणागति करने से जो भक्त होता है वो इस संसार रूपी जो वृक्ष है उससे मुक्त हो सकता है। पांचवें श्लोक तक पता नहीं हम लोग गए थे कि नहीं, लेकिन पांचवा श्लोक में भगवान ऐसे शरणागति की जो विधि है और जो लोग शरणागत हो चुके हैं उनके गुण उसके विषय में बता रहे हैं। सो आई डोंट नो वेदर वी कंटिन्यू बताया पांच किया था सो यस, शरणागति के छह अंग कौन से हो, शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा, आप तो कंठस्थ हो गया होगा है ना, शरणागति के छह अंग और छह अंग कौन से है शरणागति लिखे है, सबने लिखा है क्या, सबने लिखा है कुछ कुछ, क्या क्या है,
सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण विश्वास, अखंड विश्वास,
ओके,
उसके बाद दिख देने का अजीम भाव होना चाहिए, आत्मनिवेदन,
कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारे परम पालक है, विनम्रता आत्मनिवेदन
विनम्रता,
तो ये कर, ये इसको याद करना मुश्किल नहीं है, छह ही है, ओनली सिक्स सरंग शरणागति, ओनली सिक्स, बहुत आसान
है,
यस, फॉलो करने का पहला स्टेप है याद करना, सो प्रयास करना चाहिए कि विनम्रता बार बार याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग शरणागति सीख रहे हैं, भक्तिवान ठाकुर उस श्लोक उस स्वांग में क्या कहते हैं कि शरणागति हो पे जहां तांगर प्रार्थना सुनंद कुमार, फिर कहते हैं कि भक्ति विनोद करे भगवान को चरणों में भक्तिवान ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि सिखाया शरणागति कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधमा। भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम, मैं बहुत अधम हूं, ऐसा रो रो कर फुट फुट कर भक्तिवान ठाकुर कह रहे। सिखाए शरणागति करो ये उत्तम, इसलिए मुझे शरणागति सिखा करके मुझे उत्तम बनाइए, अधम से उत्तम बनाइए, ऐसा प्रार्थना। अर्थात शरणागति हमें करनी है लेकिन आता नहीं है कि हमें शरणागति कैसे करनी चाहिए, शरणागति का विधि क्या है, शरणागत कैसे हो रहा जाता है, ये हमें नहीं आता। तो ये कौन सिखाएगा? भक्तिवान ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप हमें सिखाइए शरणागति कैसे की जाती है। अर्थात हम लोग आचार्य परंपरा के पास जाते हैं, भक्तिवान ठाकुर के पास जाते हैं, प्रभुपाद के पास, सिखाइए हमें शरणागति कैसे की जाती है भगवान की। वैष्णव के पास जाते हैं, गुरु महाराज के पास जाते, सिखाइए हमें कि शरणागति कैसे की जाती है भगवान की। क्यों करना है शरणागति? क्योंकि मैं भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। क्यों प्राप्त करना चाहते हो भगवान की कृपा? क्योंकि ये संसार भी वृक्ष को तो केवल उनकी कृपा से ही काटा जा सकता है। और सो टेक्स्ट नंबर 6 टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दो प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। एक तो जो स्थान वो विरक्त व्यक्ति या शरणागत व्यक्ति प्राप्त करता है वो कैसा है, और वहां पर जाने के बाद कोई इधर आ सकता है कि नहीं, उसके विषय भगवान बताते हैं। पढ़िए श्लोक, फेमस होगा शायद
वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
हाँ, ये परम धाम को प्राप्त किया हुआ है उन लोगों ने, वो लोग प्राप्त करते हैं। कैसा वो धाम कैसा है? न तद्भास्यते सूर्यो, वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं, कोई सूर्य चंद्र या बिजली ये तीनों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिजली तो सूर्य से ही आती है ना, सूर्य के कारण ही बिजली जन्म पैदा हो सकती है। तो वहां पर सूर्य चंद्र और बिजली की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात वहां पर आप अब ये नहीं कह सकते कि देखो वहां पर सूर्य चंद्र बिजली की आवश्यकता नहीं है इसलिए अब यहाँ पर भी हमें सूर्य चंद्र बिजली नहीं, ऐसे नहीं, ये एक्सट्रीम हो गया। फिर यहाँ पर हम रहते हैं तो यहाँ पर सूर्य चंद्र बिजली मटेरियल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सूर्य नहीं आएगा तो अंधेरा हो जाएगा, बिजली नहीं होगी तो आप गर्मी में तपस्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदत ही नहीं है, हो सकता है ऐसा। बट मटेरियल वर्ल्ड में टू सर्वाइव प्रभुपाद इसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था कि अननेसेसरी खोटी खोटी तपस्या करो, ऐसा नहीं कहते थे। प्रभुपाद कहते थे हरे कृष्ण जपो सेवा करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, न तद्भासेते सूर्य न शशांको न पावक। अर्थात पावक का अर्थ है अग्नि, क्या आवश्यक अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी, यस। और जहां पर जाने के पश्चात फिर वापिस इधर आना नहीं पड़ता, तो वो स्थान है भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जैसे इसको दूसरा एक तरीका भी है समझने का, क्या क्या है यहाँ पर सूर्य, चंद्र और पावक तीन है। तो हमारे कुछ आचार्य बताते हैं सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य के कारण हम सब कुछ देख सकते हैं, विजन हमारा सूर्य के ऊपर आधारित है। सूर्य है तो हमारी आंखों के कई यूज है, सूर्य के बिना ये आंखें बेकार हो जाती है, होते आंख होती है फिर भी कुछ काम की नहीं है, सूर्य के कारण ही आंख का इंपॉर्टेंस है। अर्थात ये प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसा है ना, न तद भाषयते सूर्य मेरे उस धाम को, अर्थात वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है या गोलोक वृंदावन है, उस धाम को सूर्य की आवश्यकता नहीं प्रकाशित करने के लिए, या दूसरे शब्दों में सूर्य के द्वारा वो प्रकाशित नहीं हो सकता, या तीसरे शब्दों में अगर इसको हम ऐसे समझे कि आंखों के द्वारा, भौतिक आंखों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता, मटेरियल आइज के माध्यम से उसको देख नहीं सकते वृंदावन धाम को, जगन्नाथपुरी, मायापुर, शशांक को का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है उसका जो कनेक्टेड इंद्रिया है वो है मन, अर्थात मन हमारा भौतिक मन के द्वारा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहते हैं शशांक को, अगर हम चाहे कि भगवान वृंदावन धाम असली कैसा है तो आंखों से देख नहीं सकते, आप जाएंगे तो आपको बंदर ही दिखेगा, आप जाओगे तो आपको कचरा दिखेगा, लेकिन वास्तव में इस आंखों से आप देख नहीं सकते वृंदावन धाम को, मायापुर धाम को देख सकते, आप मायापुर जाओगे तो आपको वो नाव पानी बैंगवाली आदमी दिखेगा आपको नौका लेकर के जा रहा है मायापुर में, लेकिन न सूर्य न शशांक को न पावक, पावक इस तरीके से कि भौतिक सृष्टि के द्वारा कोई भी साधन, संसार का कोई भी साधन के माध्यम से भगवान के धाम को देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा अर्थ ये भी होता है स्पिरिचुअल, द अदर वे ऑफ, कृष्ण का धाम जो है वो भगवान खुद प्रकाशित कर सकते हैं, उसको ये सब की आवश्यकता नहीं है, न सुशांत को न पाव का। और फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाकर के फिर वापिस आ ही नहीं सकता कोई, क्या फंस जाता है उधर ना, तो फंस नहीं जाता उधर, उसका पतन नहीं होता, अर्थात उसको आने की इच्छा नहीं होती। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, कुछ लोग टी शर्ट के ऊपर लिखा होता है, पीछे लिखा होता है ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, सो मीन्स वहां पर जाकर के वापिस आने की इच्छा नहीं होती, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा परम धाम है भगवान का, वो मेरा परम धाम है। सो दैट इज दैट स्पेशल अबाउट प्रपद इज राइटिंग शुड बी, वी शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज संसार में हम क्या देख रहे हैं कि हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जन्म से दूसरा जन्म, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जैसे आप भगवान के धाम में प्रवेश करते हो या फिर अपनी स्थिति में पहुंच जाते हो वापिस, तो परिणाम क्या आता है, आपको ये फिर से जन्म मृत्यु में फंसना नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह होता है यद गत्वा न निवर्तन्ते का अर्थ क्या होता है, जन्म मृत्यु फिर से नहीं आता। अभी हमें इसकी कोई कल्पना नहीं है कि ऐसा क्या होता है। एक बार मैं बहुत नया नया था तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था, यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के धाम में चला जाएगा और फिर वहां पर दुख भी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां पर कोई गिरेगा नहीं वापिस, और उसका कोई थोड़ी बोला कोई बोर्ड नहीं जाएगा कोई, हमेशा निरंतर नित्य जीवन जिएगा, बोर्ड नहीं आएगा। मैंने दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम मटेरियल इमेजिनेशन के माध्यम से आध्यात्मिक जगत को नाप ही नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कोई वहां पर जाता है और आपको जाकर के इधर आकर कहता है कि देखो मैं तो जाके आया, उधर का दाम उधर का जगह ऐसा है, हमें अमेरिका जाके, अमेरिका बहुत रिच है, बड़े बड़े ब्रिज है, बड़े बड़े मोटर कार है, बड़े बड़े हाईवेज है, तो कोई लोगों को ऐसा इंटरेस्ट होता है, अच्छा चलो अमेरिका पे जाते एक बार। तो सिमिलरली आध्यात्मिक धाम की जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हमारी जाने की इच्छा बढ़ाता है धाम में। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू गो बैक होम बैक टू गॉड? इट व्हाट इज दिस फुलिशनेस? व्हाई शुड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? गो एंड लिव देयर। बस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, परेशान होना, दुखी होना, कष्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दैट? There is no need of sun, there is no need of moon. Everyone is effulgent. हर एक व्यक्ति प्रकाशित प्रकाशमान है, हर एक वस्तु प्रकाशमान है। वहां अज्ञानता है ही नहीं, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उसको तो बोलते हैं विगत कुंठ यस्माद इति वैकुंठ। विगत कुंठ यस्माद इति वैकुंठ, जहां पर चिंता है ही नहीं, बिल्कुल जहां पर किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं, उस स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। सो टेक्स्ट नंबर 7 में फिर भगवान बताते हैं उन लोगों के विषय में, आई मीन जीवों के विषय में, कि अगर ऐसा धाम है जहां से वापिस इधर आना नहीं पड़ता, तो ये जीवात्मा जो है वो फिर इधर कर क्या रहे हैं? आई मीन व्हाट इज द सिचुएशन? ये जीवात्मा के विषय में भगवान अभी बताते हैं कि वास्तव में ये जीवात्मा कौन है, उसको पढ़िए। ये भी फेमस लोग है, ममाई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव जो है वो मेरे शाश्वत अंश है, सनातन है, हमेशा रहते हैं। ममाई वांशु मम एव अंश, भगवान ऐसा कहते हैं, मेरे ही अंश है। लेकिन अंश होते हुए भी पार्ट भी है और पार्सल भी है, अर्थात ये लोग स्वतंत्र रहते हैं। क्यों? सनातन, अर्थात वो मर नहीं जाते, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो लीन नहीं हो जाते मुझ में, वो सनातन काल के लिए रहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन कर क्या करते हैं? करते क्या है? मनसस्थानी इंद्रियाणी, मन के साथ, छह इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थान, प्रकृति प्रकृतिस्थ, प्रकृति में रह करके प्रकृति स्थानी कर सकी। कर शब्द का अर्थ होता है संघर्ष कर सकी, प्रकृति स्थानी कर सकी। तो उन लोगों को एक रूप से देखा जाए तो उनकी अपनी इच्छा ही उनको कर्षद करने के लिए बाध्य करता है। जितना जितना वो भगवान से अलग होकर के प्रयास करता है सुख भोग करने का, उतना वो कर्षति अर्थात दुखों को आकर्षित भी करता है, कर्षति संघर्ष भी करता है। प्रकृति स्थाने गच्छति। पश्यति ये गुरुत्व ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, आकर्षित करता है, कर्षति। तो ये कर्षति शब्द का अर्थ ये भी होता है कि वो दुखों को आकर्षित करता है। क्या क्यों करता है, क्योंकि वो प्रकृति को भोग करना चाहता है। किसके माध्यम से करना चाहता है, इंद्रियों के माध्यम से। कौन सी इंद्रियां, पांच इंद्रियां और छठी मन। ये मन जो है वो भी वास्तव में इंद्रियों का सबसे सबसे प्रबल माना जाता है। इंद्रियों में सबसे प्रबल होता है मन। ऐसे भगवत गीता में भगवान आगे भी बता चुके हैं कि इंद्रियों में मन न हो, ऐसा बताया था। क्यों, क्योंकि वो सबसे प्रबल है और सबसे सूक्ष्म होती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई समझ भी नहीं सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं मेनी थिंग्स ऑन दिस श्लोका। सो तात्पर्य स्पीक आई रीड दैट लेक्चर इंस्टेड। श्रीमद भागवतम का पर्पट है, उसके ऊपर से मैं थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रभुपाद के श्रीमद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं ही सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, इसलिए मैं सबका सबसे प्रिय व्यक्ति हूं। आई एम द सुप्रीम डायरेक्टर एंड द डियरेस्ट। लोग गलत तरीके से सूक्ष्म या स्थूल शरीरों के प्रति आसक्त होते हैं, गलत तरीके से, लेकिन उनको मुझ में आसक्त होना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये मेरे अंश है, मम्मी वाच, ये मेरे अंश है। भगवान मुक्तात्माओं के लिए या बद्धात्माओं के लिए, दोनों के लिए सबसे उत्तम प्रियजन वही होने चाहिए। जब तक वो जानता नहीं है ये चीज को, आई जस्ट रीड इट, when a person does not know that the Lord is only dearest object, then he is the conditioned state of, he is in the conditioned state of life. And one, when one knows perfectly well the Lord is only dearest object, he is considered to be liberated. Now there may be degrees of knowing the Lord in this way. So फिर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं ये मम्मी वंशों का। ये द लिविंग एंट्री इज कॉल्ड आत्मा, लॉर्ड इज कॉल्ड परमात्मा। लिविंग एंट्री इज कॉल्ड ब्रह्मन, लॉर्ड इज कॉल्ड परम ब्रह्मन और परमेश्वर। कंडीशन सोल वुड नॉट हैव सेल्फ रियलाइजेशन। बद्धात्मा को जो आत्म साक्षात करनी है वो शरीर को सबसे प्रिय वस्तु मान के चलते हैं, और यही प्रिय वस्तु मानने का जो उनका विचार है वो कॉन्सेंट्रेटेड और एक्सटेंडेड दोनों होता है। अपने शरीर के प्रति आसक्ति होना ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और एक्सटेंशन क्या होता है, हाँ मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे बच्चे, वो वास्तव में इसके कारण एक्सपांड होते हैं। लेकिन ये सबका जो मूल कारण है वो है लिविंग एंटिटी। अगर समझ लो कि मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूं या मेरे पत्नी बच्चे को प्रेम कर रहा हूं, लेकिन उसका मूल आकर्षण कौन है, भगवान का अंश जीवात्मा। क्यों, अगर समझो कि मैं मेरी पत्नी से आसक्त हूं, लेकिन वास्तव में मेरी पत्नी से आसक्त कैसे हूं, क्योंकि जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो पत्नी का शरीर तो सामने पड़ा होता है, लेकिन फिर भी अब मुझे उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। क्यों, आत्मा नहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा अटैचमेंट किसके प्रति था, आत्मा के प्रति था, शरीर के प्रति था। अच्छा, शरीर के प्रति अटैचमेंट था तो हमारा जो हृदय आकर्षित हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, वो उसका मूल उद्देश्य शरीर तो नहीं था, तो कौन था उसके पीछे? आत्मा, राइट?
तो ये उसके पीछे जो आत्मा की एक्टिविटी शरीर में है उसके प्रति था।
हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी
एक्टिविटी खत्म हो गई तो बेकार रहता है।
हाँ चलो एक्टिविटी मान लो, लेकिन एक्टिविटी का मूल कहाँ से है? वो तो आत्मा ही, शरीर से, शरीर अपने आप में तो कुछ कर्म कर नहीं सकता। कोई व्यक्ति सुंदर आत्मा के कारण लगता है, शरीर से सुंदर नहीं होता है कोई।
तो वैसे प्रैक्टिकली सही
है, सही है ना ये,
क्योंकि आत्मा की जैसी एक्टिविटी होगी वैसे शरीर दिखेगा, वैसे एक्शन करेगा।
अरे आज आप कोई मिस वर्ल्ड, कोई विश्व सुंदरी हो, उसके लिए लोग पागल होते हो, हॉलीवुड एक्ट्रेस या बॉलीवुड एक्ट्रेस कोई हो, उसको उसको बहुत लोग पसंद करते, बहुत उसके पीछे दीवाने हैं लोग। लेकिन वही फिनो विश्व सुंदरी एक सेकंड के अंदर कोई उसको देखेगा भी नहीं, अगर उसके अंदर से आत्मा चली जाती है तो फिर वो सुंदरता कहाँ की है फिर? ऐसे तो शरीर का ही है कि भाई शरीर उसका चमकदार है और पीपल लाइक इट, ये तो आंखों को आकर्षित कर रहा है, वे आंखों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो शरीर का अपना कुछ भी नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है इसके कारण वो आकर्षित कर रहा है। तभी तो हमारा हर एक वस्तु बुद्धि एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अगर उसके अंदर बुद्धि आई कहां से? आत्मा के कारण। वो है, लेकिन
तो आत्मा को है।
यस, लेकिन शरीर जो है वो आत्मा के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आत्मा अगर ये शरीर छोड़ देता है तो उसको दूसरा शरीर मिल जाएगा।
लेकिन मिलेगा शरीर,
यस, लेकिन बिना शरीर के, बिना आत्मा के ना वो सुंदर लग रहा है, ना वो ज्ञानी है, ना ही हमारा प्रियजन बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वास्तव में ये प्रियजन भगवान का अंश है, इसलिए हमारा वो हमें प्रिय लगता है। दिस इज द कॉमन सेंस, ममई वांश, भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है, इसलिए। और इसलिए अगर कोई गलती से भगवान के बदले उसको अपना प्रियजन मान बैठता है तो दुखी होता है। भगवान वास्तव में प्रियजन है सबके। देयरफॉर द लिविंग स्पार्क और इटर्नल पार्ट ऑफ द सुप्रीम इज द रियल बेसिस ऑफ अफेक्शन, नॉट द बॉडी। शरीर प्रेम का ग्रहण करने वाला नहीं होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए प्रेम को ग्रहण करने वाला। बिकॉज द लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल लिविंग एंटिटी, देयर इज सुप्रीम लिविंग एंटिटी, चेतनस चेतना। One who has forgotten the basic principle of his love for everything has only flickering love, that is Maya. और फिर वो प्रेमला प्रेमली वाला प्रेम प्रेम में घुस जाता है, अरे अल्लाह मजनू रोमियो जूलियट, तो वो उसमें फंस जाता है, वो उसमें उसका कुछ ज्यादा, दैट इज नॉट, दैट इज लस्ट। लेकिन प्रेम जो होता है वो भगवान के साथ, वो आध्यात्मिक वस्तु। The more one is affected by the principle of Maya, the more he is detached from the basic principle of love. जब तक वो माया से जितना, जितनी मात्रा में वो आकर्षित हुआ है माया के सिद्धांत से, उतना वो प्रेम से दूर रहता है। जो सिद्धांत है प्रेम का, उससे वो दूर रहता है। मनुष्य किसी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को तब तक प्रेम नहीं कर सकता जब तक उसने भगवान की प्रेम भक्ति शुरू नहीं की है। तब तक वो किसी को प्रेम ही नहीं कर सकता है। आपको लगेगा नहीं नहीं प्रभु जी क्या बात करते हैं, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत इंसिडेंट है, हमने तो बहुत लोग को प्रेम किया है। लेकिन वो हमारे सामने जो भी दिख रहा है, जो वो केवल वास्तव में माया का प्रदर्शन था। वास्तव में जो प्रेम होता है वो तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों के पास ही होता है, और किसी के पास होता ही नहीं है, और कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। भगवान के भक्तों को प्रेम करना या भगवान को प्रेम करना, यही प्रेम का सार्थक है। सो इसलिए श्रीमद् भागवतम के 3rd canto 9th chapter में से मैं पढ़ रहा था अभी ये। सो ये प्रेम मायावादियों के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि अ रिच माइजर डज नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज हिज वेल्थ। धनवान कंजूस, उसको नहीं पता कि धन का उपयोग कैसे किया जाता है। एंड देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच, हिज माइजरली बिहेवियर कीप्स हिम एवरलास्टिंगली पुअर। यद्यपि वो धनवान होने के बाद भी कंजूस होने के कारण हमेशा गरीब ही रहता है, लेकिन जिसको पता है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, वो तुरंत धनवान बन जाता है। इस तरह से मायावादी लोग होते हैं, उनको कृष्ण के प्रति कोई अफेक्शन नहीं होता है, इसलिए कृष्ण को कभी देख ही नहीं पाते। दे कैन नॉट इवन सी। एग्जाम्पल के रूप में प्रभुपाद एग्जाम्पल ये कि अ डिवोटी ऑफ सन गॉड इवन दो डिवोइड ऑफ आई साइट, सूर्य देव का भक्त अंधा होकर के भी सूर्य को देख सकता है, you know. लेकिन ऐसी संगवा इज गिवन फ्रॉम दिस, वेयर इज वन हु इज नॉट अ डिवोटी, जो सूर्य का भक्त नहीं है, वो सूर्य का तेज को ग्रहण नहीं कर सकता, कैन नॉट। इसी तरह से ज्ञानी या मायावादी जो होते हैं भगवान को प्रेम नहीं कर सकते या वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। सो ममैव वांछनीय लोके जीवभूत साधना मनसस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कप्सति। अभी वो आत्मा जो भगवान का अंश है वो, यस, कुछ पूछ रहे थे कोई? ओके, मनुष्य मन का जो शक्ति है, मनुष्य के मन का, वो उसके भविष्य को बनाने में उसकी सहायता करता है। अभी किस तरह से उसके विचार उसको प्रभावित करते हैं वो नेक्स्ट श्लोक में बताया है।
संसार में जीव अपनी क्रिया की बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
मन हमारा जो है वो सारा संग्रह करता है, जो कुछ करता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, डिजायर करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, अनुभव करता हूँ, ये सब कुछ स्टोर करता है, ग्रहण करता रहता है माइंड हमारा, सब कुछ, एवरी स्मॉल थिंग। कोई व्यक्ति को गुलाब जामुन पसंद है, क्यों पसंद है? आपको क्या पसंद है? काजू कतरी पसंद है। आपको काजू कतरी पसंद है, क्यों पसंद है? काजू कतरी को देख करके आपको ये स्मृति आती है कि एक बार जब मैंने इसको खाया था तो क्या आनंद आया था, उसके बाद जब भी मैंने प्रयास किया तो मैं सफल ही गया। जितनी बार मैंने काजू कतरी खाई उतनी बार आनंद दिया, तो अभी मैंने इसको एक लेबल लगा दिया, काजू कतरी इज द बेस्ट, ये मैंने लेबल लगा दिया। ये स्टोर कहाँ पर किया? माइंड के अंदर स्टोर कर दिया कि काजू कतरी सबसे प्रिय है, ये हमारे मन ने कहा। सीधी सी बात है, हर एक छोटी चीज, हर एक चीज वो मन उसको संग्रह करती है, हर एक छोटी, जैसे आप ये खिड़की से ऊपर से ऐसा जो आप कोने पे जाके बैठोगे तो मन में विचार आएगा कि यस आई रिमेम्बर, मेरा एक बार मैं चेयर पर से गिर गया था तो मैं चोट आ गई, इतने ऊपर से गिरूंगा तो क्या होगा। हेलो, वो स्टोर किया गया है, वो स्टोर है, बोले नहीं बंद कर दो खिड़की। तो ये सारा संग्रह मन करता है, लेकिन यही मन वास्तव में क्या करता है, एक शरीर में से दूसरे शरीर में ले जाने का काम वो करता है। अर्थात मटेरियल वर्ल्ड में हम जो कुछ भी हमारे जीवन में अनुभव करते हैं या कार्य करते हैं, वही कार्य मन के द्वारा इसी तरह से जाता है जैसे हवा सुगंध को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। So, अगर हवा यस
जब हो जाती है तो आत्मा के साथ मन जो
हाँ मन जाता है सांस में,
वही उनके साथ
मन चला जाता है उसके साथ,
तो दूसरा शायद जन्म हो तो
वही मन आएगा उसके पास, वही मन आएगा।
मन बुद्धि अहंकार तीनों,
हाँ तीनों मन बुद्धि अहंकार तीनों जाएंगे साथ में।
इसका मतलब है कि जब तक जीवात्मा निकलती नहीं है भौतिक जगत से,
मन को छोड़ने वाला, लेकिन मन को मित्र बनाया जा सकता है। अगर मन को भगवान के चरणों में डाल दिया गया, मन मना कर दिया गया, मन मना भाव मन पर, तो फिर वो मन आपके हेल्प भी करने वाला है। फिर आप भागोगे ना तो मन कहेंगे अरे वेर यू गोइंग बी हियर यू नो हरे कृष्ण जब करो, मन ही फिर आपको कहेगा लाइक दिस। मन इज फ्रेंड ऑल्सो इज एनिमी ऑल्सो। एनिमी क्या होता है कि आपको लुभाता है ललचाता है, ये मन का काम है। लेकिन वही मन को आपने हैबिट डाल दिया हरे कृष्ण मंत्र से, तो प्रैक्टिस करते करते फिर आप गलती करोगे तो वो पकड़ लेगा। क्या कर रहे हो, डू इट प्रॉपरली ऐसे। यस यस यस, दिस श्लोक इज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। जो जिस भाव से दूसरा शरीर त्याग करता है उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। सारी इच्छाएं हमारी स्टोर हाउस में स्टोर हो जाती है मन के अंदर, फिर दूसरे शरीर में उसके आधार से भगवान आपका स्कैन करते हैं, क्या है तुम्हारे मन की इच्छाएं, तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट क्या है। देन अगर कोई हवा पवन गुलाब के बगीचे से पास होकर आ रही है तो आपको खुशबू आती है ना, Isn't it? अच्छी सुगंध, मधुर सुगंध आती है। तो हवा जो बहकर आ रही है वो हवा सुगंधी है क्या? हवा सुगंधी नहीं है, वास्तव में सुगंध हवा की नहीं है, सुगंध तो फूलों की है। लेकिन हवा उसको बहकर के लेके आती है तो वो माध्यम बनता है। इसलिए इच्छाएं जो है वो मन की नहीं है, इच्छाएं तो हमारी अज्ञानता के कारण जन्म लेती है, लेकिन वो मन उसका माध्यम बनकर के दूसरे शरीर में ले जाता है। So, उसी तरह से अगर वही हवा गटर या गंदगी में से गुजर करके आती है तो हवा में बदबू नहीं है, हवा बदबू वाली नहीं है, वास्तव में हवा का कोई सुगंध नहीं है, लेकिन वो वहां से गुजर करके आई है, इसलिए वो उसका काम है केवल वहन करना और कुछ नहीं है। So, ऐसा कहा गया है कि मायापुर धाम में जो गंगा नदी है, मायापुर धाम में आपने देखा है शायद, आप में से कोई गया भी होगा मायापुर, तो मायापुर धाम में जो गंगा नदी है उस गंगा नदी को छू करके कोई पवन जाता है, नदी को छू करके ऐसे वो पवन जाता है नदी की ओर से, नदी को छू करके नदी के पानी के ऊपर से, तो नदी को छू करके जो पवन जाता है वो पवन किसी को स्पर्श करता है उसको भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो जाता है। ऐसा शास्त्र होता है, हाँ हाँ उसको भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा होता है। वो गंगा नदी लेकिन मायापुर की गंगा, मायापुर की गंगा उसको स्पर्श करके जो पवन जाता है, जो स्पर्श करता है जिसको, तो उसको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा होता है। इट्स वेरी स्पेशल, वहां ठंडी हवा, गर्म हवा या ठंडी हवा कोई भी हवा आती हो, यू शुड बी थैंकफुल ये हवा भी आपको हेल्प कर रही है। हाँ जी, यस यस, कृपा तो परमानेंट ही होती है, लेकिन परिणाम होता है कि सिंसियर को मैग्नेट की तरह कृपा आकर्षित कर सकता है। कहता है। सो द सोल इज ट्रैप्ड इन ग्रॉस बॉडी एंड सटल माइंड। जो आत्मा है वो बंधा हुआ है, लेकिन वो मन के माध्यम से अगर वो उसको शुद्ध करता है देन इट कैन ही कैन बी लिबरेटेड। मन का जो लक्षण नेक्स्ट श्लोक में जो वर्णन किया गया है वो उसी तरह से जैसे कोई लोहा आकर्षित होता है चुंबक के माध्यम से। ये कौन सा श्लोक था? आठवां। सो एक्चुअली जैसे मन, जैसे हवा में कोई खुशबू नहीं होती, इस तरह से आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती। आत्मा में किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है, आत्मा परम शुद्ध है। मैं वांछ जीव लोग जीव भूत सा, लेकिन जिस चीज के प्रभाव में आता है उस चीज को वो ग्रहण कर लेता है, ये उसकी समस्या है। ओके, सो वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज नाउ। कृष्णा बताते हैं आगे टेक्स्ट नंबर 9 में द क्वालिटी ऑफ द माइंड। पढ़िए।
प्रमाण जीव विद्युत स्थूल शरीर धारण करीने अमुक प्रकार ना कान हाथ जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करे छे કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે।
જબ વો કુત્તા બન જાતા હૈ કોઈ વ્યક્તિ તો ઉસકો કુત્તે જૈસા નાક ઉસકા જીવા સ્પર્શ आंखें सब कुछ उसको कुत्ते के अनुरूप मिल जाता है। सब कुछ एग्जैक्टली जो कुत्ते को जैसे पसंद आता है ना वही सब उसको दिया जाता है। तो कुत्ते के अनुरूप उसको सब मिल जाता है, तो उसका सोचने का जो तरीका होता है ना वो भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो कुत्ते के शरीर में आया है, इसलिए। कुत्ता क्या कर सकता है? भौंक सकता है या उसके सोचने का कुछ टिपिकल तरीका होता है मेरे इलाके में जाने का नहीं आने का, राइट? तो वो कुत्ता ही कर सकता है। क्यों आप बिल्ली को झगड़ते नहीं देखा कि मेरे इलाके में नहीं आने का? मोस्टली कुत्ता ही करता है ये काम। तो एक एग्जांपल दिया, जो मनुष्य जिस शरीर को प्राप्त करता है उस पर्टिकुलर शरीर का जो इंद्रिय का सेट होता है, इंद्रियों का जो क्वालिटी होता है या इंद्रिय ऑब्जेक्ट का सेट वो एंजॉय करता है। जैसे सुअर को मल खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये केवल सुअर को ही अच्छा लगता है मल खाना, सबको अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस पर्टिकुलर शरीर में आया है, इसलिए उसको वो अच्छा लग रहा है, therefore he likes it। अगर समझ लो जैसे कि इस प्रकार का हमारा मनुष्य शरीर में हम लोग अभी है और हमारी मन की इच्छाओं को इकट्ठा करते 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 फिर उस प्रकार से शरीर दिया जाता है। जैसे समझ लो कि कोई हमें उड़ने की इच्छा है, हैंग ग्लाइड करना है हमें, तो अलग अलग प्रकार का हम प्रयास क्यों करें? नकली पंखे लगा करके फिर ऊपर आकाश में जाओ और फिर कूदो और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? और किसी को स्कूबा डाइविंग अच्छा लगता है, स्कूबा डाइविंग सुना है आपने? और किसी को स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छा लगता है, तो इतना सब मेहनत करने की क्या हो सकता है? फिर वापस नीचे आओ, वापस अपने व्यवस्था करो, वापस ऊपर जाओ, क्यों ये सब? क्यों? सिंपल, पक्षी बन जाओ, सिंपल, इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? सो हमारी अपनी अपनी इच्छाओं के आधार से हम पक्षी बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, हम अलग अलग इच्छाओं, जैसे कोई व्यक्ति होता है उसको कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बहुत होता है ऐसा, नेकेड क्लब, नेकेड क्लब में क्या होता है, वो लोग सब लोग कपड़े नहीं पहनते, सब नंगे नंगे घूमते रहते हैं पशुओं की तरह, जैसे पशु का भीड़ होती है ना वैसे, सब नंगे नंगे। एक बार प्रभुपाद को आमंत्रण किया था नेकेड क्लब के लेक्चर देने के लिए, और प्रभुपाद लेक्चर देने गए और प्रभुपाद ने देखा सब नंगे, सब पुरुष स्त्री सब नंगे, सब पहले प्रभुपाद का प्रवचन, फिर बाद में प्रभुपाद ने लेक्चर तो ले लिया, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद फिर प्रभुपाद ने कहा कि आगे से इस प्रकार के लेक्चर अरेंज मत करो मेरे लिए, इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अस, ये सब नंगे नंगे लोग बैठे होते हैं आपके सामने, जो जो लोग बहुत नंगा रहना पसंद करते हैं उसके लिए भी सुविधा है, उसको पेड़ बना दिया जाता है कि तुम अमेज़न के जंगल में रहो हमेशा सालों साल तक पड़े रहो वृक्ष में, उसमें कोई कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं, तो जिसको जैसा चाहिए उसको उस प्रकार से शरीर दिया जाता है। ये कौन हेल्प करता है, इसके अंदर मन हेल्प करता है। सो और ये जो कुछ हैपनिंग हो रहा है ना, वो दास बन जाता है विषयों को सेवता है, विषयों का सेवन करता है, उपसेवत है। अभी वो व्यक्ति ये सब देख क्यों नहीं पाता है, ये सब हो रहा है वो, यस क्वेश्चन।
आपने एक बताया लेक्चर में कि पूरा लाइफ का फ्लैग पैक होता है द टाइम ऑफ डेथ, जैसे हम वो देखते हैं ना तो कसीनो में होता है वो, जैसे गोल गोल घूमता है तो उसमें से जैसे मृत्यु होती है, जैसे से एग्जांपल तो उस टाइम पे जो याद आता है, जैसे कोई बताया जिसमें से मल्टीपल ऐसे है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो भी इच्छा फिर आप प्राण चले गए तो वो इससे लगे लॉटरी, ऐसा होता है
फ्री स्पिन जैसा नहीं होता है
या फिर जो ज्यादा हावी होता है या कैसे,
इट्स ऑल टुगेदर ऑफ कोर्स। जैसे आप जो बता रहे हो कैसीनो में कैसा होता है, फ्री स्पिन होता है, फ्री स्पिन में क्या होता है कि छुर घूमता है बोलो राइट, वो जहां पर आकर के अटकता है वहां पर अटकता है, उसके अंदर जो लिखा है वो आपको मिल गया राइट, ऐसा होता है। लेकिन ये कैसा होता है कि आपके एंटायर लाइफ के दौरान जो कुछ आपकी इच्छाएं, आपके कर्म, आपके अनुभव, आपके कर्म, आपको जो कुछ आपने किया है वो सब इकट्ठा होता है, और उसके आधार से, उसके आधार से प्लस माइनस का हिसाब कर सके, इतना परसेंट डेबिट किया, इतना क्रेडिट किया, इतना डेबिट किया, और उसके आधार से फिर एक अमाउंट क्रिएट होती है कि ये अमाउंट तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, तो उस अमाउंट के अनुरूप या उसके अनुरूप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट शरीर होता है वो आपको दे दिया जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट शरीर, आपकी सारी डिजायर्स, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे कर्मास, सारे संस्कार, ये सब कुछ इकट्ठा करने के प्लस माइनस पूरा करके जो बचता है को कौन सा सबसे फिट कौन सा आता है आपके लिए शरीर, तो उसमें शरीर देखा जाता है, स्थल स्थल देखा जाता है, पेरेंट्स देखे जाते हैं, मन बुद्धि उस प्रकार से प्राप्त होते हैं, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव उस तरह से होता है, खानदान उस प्रकार का मिलता है, सब कुछ उसके आधार पर तय किया जाता है। देन यू आर गिफ्टेड विद द वंडरफुल न्यू बॉडी, नया शरीर का उपहार आपको प्राप्त होता है।
हम लोग फिजिक्स में नहीं पहले फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सिर्फ मल्टी डायरेक्शनल फोर्स होता था, तो कोई इधर को इधर इतना वेक्टर लग रहा है, इधर इतना न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है, हर तरफ डायरेक्शन होता था, तो उसके फाइनल वेक्टर निकालते थे। तो हो सकता है कि जो मल्टी डायरेक्शनल फोर्स जिंदगी भर में इकट्ठे हुए हैं इन सबका भगवान जी वेक्टर निकालते हो, फाइनल फोर्स कहा जाता
होगा,
उसी फाइनल डायरेक्शन की तरफ
वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। आपके पूरे दिन का ही सोच रहा हूँ, पूरे दिन में हम जो कुछ भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 50,000 चीज करते हैं, लेकिन वो करता रहता है कोई अच्छी कोई बुरी, तो सबका प्लस माइनस होते 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 अंत में परिणाम आता है कि क्या था पूरे दिन का कंक्लूजन। तो फिर वो चीज आपके माइंड के अंदर आता है या दूसरे जन्म में फिर आपको वो चीज। ये फ्लैशबैक का अर्थ क्या होता है कि लाइफ का पूरा फ्लैशबैक आता है। इसका अर्थ यही होता है कि सारी घटनाओं आपके सामने जैसे मूवी रील की तरह घूमती है, सारी घटनाएं आपके सामने आ जाती है। इसका कारण है कि उस विचार से आपका दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसे जितना ज्यादा भक्ति किया होगा तो वो सारी घटनाएं भी आपके सामने आएगी ना। लाइक दैट इन साधारण नियम है, भगवान के भक्तों के लिए इस प्रकार के नियम बाध्य नहीं है। भक्तों को ऐसे सब नियमों से गुजरना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है।
जैसे निचली जमीन का कोई है तो उसको जैसे मरने टाइम किसी साधु का दर्शन हो गया तो उसको किस प्रकार के गति मिलेगी?
अगर वो साधु के कपड़े को देख करके अगर ऐसा सोचने लगे कि अगर मैंने कॉटन कपड़े का बिजनेस शुरू किया होता तो शायद आज धंधो बिजनेस हो जाता।
पता है
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे जन्म में जो कुछ किया होता है वो मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसी चीज को याद करता है अंत समय में भी। इसलिए अगर साधु का दर्शन अगर हो भी जाता है तो उसका पवित्र हो जाता है वो, क्योंकि उनकी उपस्थिति से वो पवित्र हो जाता है तो उसका बेनिफिट उसका अवश्य मिलता है। और साधु उसको हरिनाम बुलवा देता है तो उसका उद्धार हो भी सकता है। लेकिन स्वाभाविक जो प्रोसेस है जो साधारण फ्लो है उसमें तो उसको उसके कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि साधु के रूप में भी जरूरी नहीं है कि वो साधु की साधुत्व का वो ग्रहण करेगा, साधु के साधुत्व को। वो ऐसा भी हो सकता है कि साधु से जुड़ी हुई और कोई चीज को याद कर ले उस समय जो मटेरियल हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो साधु का सद्गुण ही देखेगा ऐसा।
एक चीज आती है भगवान श्री कृष्ण के उसमें एक वेश्या थी जो अपने तोते को भगवान का नाम जपाया
करता था। यस
तो उसकी उसकी वेश्या की मुक्ति हो गई। फिर तोते के बारे में कुछ कहीं जोर नहीं आता है, तोते का क्या?
अच्छा तोता का तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ।
वो कहते हैं कि तोते को पढ़ाते हुए कई कई जगह पढ़ना लगता है। सुभाष जी ने भी कई जगह लिखा है कि जो एक वेश्या थी तोते को हरनाम पढ़ाती थी और तोता भी हरनाम बोलता था। तो वेश्या का तो वैसे भी तो संगति हो गई, तोते का कोई अनुमान नहीं।
तोते का हम अनुमान लगा सकते हैं कि तोता को भी मनुष्य जन्म मिल गया या फिर वो भी भगवत धाम चला गया। नहीं नहीं गरम किया, गरम किया। अच्छा तो लोग क्यों नहीं देख पाते ये सब जो हो रहा है उसको? वो पढ़िए नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 10।
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है।
उत्क्रामंतम इदम वही है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम वापि। कौन सा गुणान्वितम? उत्क्रामंतम स्थितम्बापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानवशः। तो उत्क्रामंतम अर्थात कैसे जन्म होता है, स्थितम कैसे वो रहता है, उत्क्रामंतम स्थितम्बापि वा अपि अर्थात इसके अतिरिक्त और किस तरह से गुणों को भोगता है, भुंजानम वा गुणान्वितम किस तरह से प्रकृति के गुणों को भोगता है, विमूढान अनुपश्यन्ति ये मूढ़ लोग होते हैं इसको देख नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते, प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते थे बार बार, विमूढ आराहन पश्यन् हि, मूड लोग ये नहीं देख सकते। मनुष्य जो मूड होता है वो साधारण मनुष्य इसको समझ नहीं सकता कि वो जन्म कैसे लेता है, वो प्रकृति को भोगता कैसे है, ये सब लोग समझ नहीं सकता। कौन नहीं समझ सकता? मूर्ख लोग। विमूढ आराहन पश्यन्ति, फिर कौन देख सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान चक्षु होता है वही इसको देख सकते हैं, और कोई देख नहीं सकता इसको। जिसके पास एक तो मूड होता है और दूसरा होता है विमूड, जो विशेष मूड होता है, जो स्पेशली मूड होता है, वो अधिक मूड होता है, अधिक मूड। तो ये विमूढा नानुपश्यन्ति, विमूड व्यक्ति होता है वो इसको देख नहीं सकते, वो इसको समझ नहीं सकते, वो लोग अंध होते हैं। किस चीज के लिए अंध होते हैं? इंद्रिय भोग करने में अंध होते हैं, इंद्रिय भोग करने में। जैसे कैसे एक मनुष्य, एक बकरा कतर खाने में लाइन में खड़ा है और आगे वाला बकरा भी कट रहा है, वो देख रहा है, फिर भी वो खाने में पड़ा है, इंद्रिय भोग कर रहा है। तो ये युधिष्ठिर महाराज भी वही कह रहे हैं ना, अन्यानि भूतानि, कि हर एक मनुष्य देख रहा है कि उसका दादा गए, उसके रिश्तेदार गए, वो गया, भाई गया, सब एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय भोग करता रहता है, फिर भी इंद्रिय भोग करता रहता है। तो विमुढा नाम पश्यन्ति, वो अंधा हो जाता है इंद्रिय भोग करते करते करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि सुख और दुख इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इसलिए शरीर को आत्मा से अलग करने में वो लोग विमूढ़ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक चीज का अनुभव करने की उनकी क्षमता चली जाती है उनकी भौतिक इच्छाओं के माध्यम से, उनकी तीव्र इच्छा इतनी होती है कि वो आध्यात्मिक चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं सकते। विमूढा नाम पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, केवल वही लोग देख सकते हैं। ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षुषा का अर्थ ये भी होता है कि जिसके पास ज्ञान चक्षु होता है वो सब कुछ देख सकता है, उत्क्रामंतम वो देख सकता है, समझ सकता है। सिदम्बापी भुंजान वा गणान गुणान्वितम, यह सब कुछ वो देख सकता है। कौन देख सकता है? जिसके पास ज्ञान चक्षु है, अर्थात जिसने शास्त्र को पढ़ा है, जिसने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, जिसने भक्ति शास्त्र कोर्स किया है, फॉर एग्जाम्पल, वो भक्त शास्त्र का उपयोग पूरा हर एक वस्तु को यथारूप समझ सकता है। यथारूप, यथारूप का अर्थ क्या होता है? यू नो द थिंग्स एज दे आर, यू कैन नो व्हाट इज व्हाट, वस्तुतः स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हो। हर एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो ज्ञान चक्षु के माध्यम से, उस स्थिति को, परिस्थितियों को, समय को, लोगों को, फिर लोगों के व्यवहार को, ये सब चीजों को ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। सो ये विमूढ़ा लोग जो होते हैं उनकी अज्ञानता का उपाय क्या है? उनको अज्ञानता का उपाय है ज्ञान चक्षु। लेकिन जो लोग ज्ञान चक्षु को फॉलो करते हैं, आई मीन जो ज्ञान चक्षु को स्वीकार करते हैं, उन लोग के विषय में, और जो लोग नहीं करते उन लोग के विषय में भगवान बताते हैं। 11 टेक्स्ट नंबर 11 में पढ़िए,
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रति योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।
जो लोग अज्ञान में होते, विमूढ़ा और ज्ञान चक्षु, दोनों का बताया एक एक चीज। ज्ञान चक्षु का फर्स्ट लाइन है और विमूढ़ा का सेकंड लाइन है। तो विमूढ़ा जो है वो लोग प्रयास करने के पश्चात भी समझ नहीं सकते कि हो क्या रहा है। आत्मा का जो देहांतर होता है वो शुद्ध हृदय वाले लोग तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कुछ नहीं समझ पाते इसके विषय में। इवन वन विदाउट नॉलेज, सो इम्प्योर अर्थात जो शुद्ध अपवित्र है वो लोग इसको समझ नहीं पाते या इसको ग्रहण नहीं कर पाते। एनीवे नाउ we can have small exercise. Yes.
जो टेन में है विमुरा, तो वैसे तो हम सब विमुरा ही है और थे, और मतलब फिर ज्ञान चक्षु की कृपा जो होती है तो विमुरा को इजीली उनको ज्ञान, वो भी ज्ञान चक्षु प्राप्त हो सकते हैं। बेसिकली तो सभी लोग यहाँ भौतिक जगत में मतलब वो विमुरा ही है।
yes.
का मतलब ये
सनातन विमुरा नहीं है,
नहीं भौतिक जगत में है उसका मतलब ऐसा।
yes. लेकिन वो ज्ञान चक्षु को लेकर के फिर वो फिर विमुरा रहते नहीं, वो लोग फिर वो ज्ञान चक्षु का पालन करते हैं या उसका सहायता देते, तो फिर उनका भी ज्ञान हो जाते हैं, चक्षु उन्मिलितम आंखें खुल जाती है फिर। सो नाउ वी हैव स्मॉल एक्सरसाइज, दिस इज राइटिंग एक्सरसाइज, टेक्स्ट नंबर 12 एंड 13, देन वी विल स्टॉप। पढ़िए।
सूर्य का तेज जो सारे ईश्वर के अंधकार को दूर कर सकता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है।
तेज वा
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता हूँ।
और चौदमा भी पढ़ लो।
मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर और श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ।
तो जिनके पास कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है वो लोग कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके भी कृष्ण को समझ सकते और कृष्ण से आकर्षित हो सकते हैं। क्या कहा था भगवान ने, क्या कहा इसमें, सूर्य के रूप में सारे संसार में जो भी अंतर है उसको मैं नष्ट करता हूं, वो सूर्य मुझसे प्रकाशित होता है। चंद्रमा का प्रकाश जो है वो मुझसे आता है, चंद्रमा बहुत काम आता है। सूर्य के कारण तो हम देख सकते हैं, अन्यथा कुछ देख नहीं सकते। चंद्रमा शीतलता तो देता ही है लेकिन चंद्रमा स्वाद भी देता है, वो आएगा शायद आगे नेक्स्ट। हाँ भगवान आगे 15वें श्लोक में बोला कि औषधियों को रस भी मैं देता हूँ, अर्थात अगर आपको गन्ना अच्छा लगता है आपको, अच्छा फ्रूट आपको कौन सा अच्छा लगता है, स्वीट तो अच्छा मान लिया, फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है, मैंगो। तो मैंगो का जो फ्लेवर होता है ना, मैंगो एक टिपिकल स्वाद होता है, तो वो स्वाद मैंगो में आया कहां से, चंद्रमा के माध्यम से। चंद्रमा उसके अंदर रस प्रदान करने वाला होता है। सभी में, सब्जी में भी रस होता है, सब्जी का एक अपना स्वाद होता है कि सब्जी पर्टिकुलर वो सब्जी उसी स्वाद की लगती है। तो ये सारे स्वाद आते हैं चंद्रमा के माध्यम से, और भगवान कहते हैं कि अंधकार को भगाने वाला सूर्य और चंद्रमा की शीतलता और यहाँ तक कि अग्नि का प्रकाश भी मुझसे प्रकट होता है, और अग्नि बहुत जगह काम आती है। मैं सभी प्लेनेट के अंदर प्रवेश करके उसको ऑर्बिट के अंदर स्थायी कर रखता हूँ, उसको ऑर्बिट में ये घूमता रह जाए, अन्यथा अगर भगवान उसमें से हट जाए तो जैसे धागा निकल जाए मोतियों में से, माला होती है तो मोती का क्या होगा, सब बिखर जाएंगे। तो उस तरह से भगवान उस धागे की तरह है, सूत्रे मणि गणाय वा, कौन सा श्लोक है वो, सूत्रे मणि गणाय वा, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मई प्रोतम इदम सर्वम, सब कुछ मुझ में प्रोत है किस, और जैसे सूत्रे से सूत्र में ये धागे में मणि होते हैं, उस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं सब में प्रवेश करता हूँ और उसको ऑर्बिट में स्थायी रखता हूँ, सब प्रकार के वेजिटेबल्स को जूस मैं प्रदान करता हूँ। तो पहले तो भगवान ने क्या बोल दिया था छठे श्लोक में कि मेरे धाम में सूर्य चंद्र अग्नि किसी की आवश्यकता नहीं है, बोल दिया उधर छठे में बोल दिया था, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमें ये सब चीज चाहिए तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए फिर मुझे ही आना पड़ता है, मैं ही सूर्य चंद्र अग्नि बन के आता हूँ फिर, और फिर मेरे अंश के कारण ये सब कुछ होता है प्रवर्तमान, हम हमारे अहंकार के कारण कृष्णा के ऊपर आधारित नहीं रहते और हम ये समझते नहीं कि सब कुछ भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन अन्यथा सूर्य चंद्र और अग्नि ये तीनों के ऊपर हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं। भगवान परफेक्ट एग्जांपल यूज कर रहे हैं किसी को बताने के लिए, 14वें श्लोक में बताया कि पहले तो अन्न को पका तो मैं हूं, अन्न को पकाने के बाद उसमें चंद्रमा बन करके उस चंद्र को पकाने के लिए बारिश चाहिए, तो बारिश सूर्य के रूप में मैं बादलों में से बारिश भिजवाता हूँ, क्योंकि पानी को इवेपोरेट करता हूँ और फिर वो पानी बादलों में जाता है, फिर वो बादल जो है वो बारिश बरसाते है। क्या कौन करता है ये कार्य, सूर्य करते है, सूर्य किसका अंश है, मेरा अंश है, फिर वो बारिश होने के कारण उसमें पौधे उगते है अन्न में, वो पौधे बड़े होते हैं लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता है, तो फिर रात को चंद्रमा बन के फिर उसके अंदर मैं स्वाद डालता हूँ, और फिर स्वाद बनने के बाद जब पौधा पक जाता है उसमें से निकाला जाता है अन्न या सब्जियां, वो सब ग्रहण की जाती है, उसको कच्ची तो कोई ज्यादा खाते नहीं सब्जी है ना, बैंगन कच्चा खाते आप नहीं खाते है? तो इस प्रकार से सब्जियां जो होती है उसको फिर पकानी पड़ती है, उसमें तड़का लगाना पड़ता है, तो सब्जियां पकाने के लिए क्या चाहिए, अग्नि चाहिए, भगवान बोले वो कहां से आती है, वो मैं से आती है। अच्छा चलो अग्नि हो गया, स्वाद भी आ गया, पक भी गया, पूरा हो गया, अब उसको खाऊंगा मैं, तो खाने के बाद फिर पचाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो अग्नि भी मैं जठर अग्नि है ना, डाइजेशन फायर, ये कहीं से छोड़ा नहीं भगवान ने, पूरा चेकमेट कर दिया, पूरा लॉक कर दिया इधर, भगवान ने कहा आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड आई जॉइन विद द एयर ऑफ लाइफ, सांस अंदर आती जाती है, और चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं, इसको भी भगवान ने बता दिया, ऐसा नहीं कि भाई पानी तो नहीं, पानी तो मैं पचाता हूं ना, भगवान ने बता दिया चारों चीज मैं पचाता हूं, पांचवा कोई तरीका है ही नहीं, यहां पर भी लॉक लगा दिया। तो कौन से चार है, चास्य लेहिय, कौन से होते हैं, पेय, हाँ ही इज मास्टर संस्कृत, नहीं वो संस्कृत शब्द,
चूसने
वाले ये चार प्रकार के होते हैं व्यंजन, हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, चाटते हैं, चूसते हैं, सब करते हैं, जैसे गन्ना होता है तो उसको चूसना पड़ता है, मौसम्बी है तो उसको चूसना पड़ता है, संतरा है तो उसको चूसना पड़ता है, फिर चाटने के लिए मक्खन होता है, शहद है तो उसको चाटा जाता है, अन्न इत्यादि सबको चबाया जाता है, खाया जाता है, दूध है, छाछ है, अमृत है उन सबको पिया जाता है। तो इस तरह से एक चार प्रकार के जितने भी अलग अलग है अलग अलग तरीका वो सबको पचाने के लिए जो जठर अग्नि चाहिए डाइजेशन फायर वो मैं हूं। अगर डाइजेशन फायर वीक हो जाती है हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है तो भूख नहीं लगती है फिर है ना। अब खाने आपको एपेटाइट डाउन हो जाती है खा नहीं पाएंगे आप है ना। कुछ लोग होते हैं वो एपेटाइट डाउन हो जैसे अभी मानसून में होता है ऐसा। मानसून में क्या होता है कि भूख नहीं लगती है या फिर भी खा लेते हैं तो इनडाइजेशन हो जाती है एसिडिटी कई बार हो जाती है एनीथिंग कैन हैपन। डाइजेशन अगर नहीं होता है तो बहुत सारी समस्या आती है शरीर में। डाइजेशन बोलते भगवान बोलते हैं वो तो मेरे कारण होता है मैं ही डाइजेस्ट करता हूँ। तो अपने आपसे तो कुछ कर ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं खाना पकाते हैं वो उसमें स्वाद डालते हैं वो उसमें अग्नि के लिए पकाते हैं वो उगाते हैं वो फिर मुंह में डालने के बाद फायर डाइजेशन वो भी डाइजेस्ट भी वही करके देते तो हम करते क्या है फिर भी अपने आप को बोलते हैं मैं ईश्वर हूं मैं भोगे मैं भगवान हूं। तो कहां का ईश्वर भाई तू किस प्रकार का अपना खाया हुआ खुद पचा भी नहीं पाता है ना। सो दिस वी शुड ट्राई टू डन में भी सो टेक्स्ट नंबर 14 तक हमने यहां पर टुडे वी डिस्कस्ड टिल टेक्स्ट नंबर 14। 15वां श्लोक बहुत फेमस है सर्वस्व चाहम दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चन ओके।